पूरा दिन और रात ऐसे ही निकला। निक दूसरे लोगों को देखने में लग गया था। बाकी के लोग भी बिजी हो गए थे। प्रियल एक जगह पर खड़े निक को ही देखती रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी और उसकी मदद के लिए हाथ भी बटाना चाहती थी, मगर निक जिस एरिया में था वहां स्पेशल लोगों को ही जाने का अधिकार था। देर रात तक देखते देखते वो वहीं सो गई जहां से निक को देख रही थी। निक काम करने के बाद वापस आया तो उसे प्रियल सबसे पहले दिखी। वो उसे देखते ही समझ गया था ये यहां उसकी वजह से थी और उसे ही देखने का काम कर रही थी, जिसमें उसे नींद आ गई। ये देखकर निक ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाते हुए बोला, अब मुझे ही इसे उठाकर कमरे तक लेकर जाना होगा। उसने प्रियल को उठाया और उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ा। निक, आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? प्रियल नींद में बड़बड़ा रही थी। वो जो कह रही थी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन निक को उसकी बात समझ आ रही थी और जिसे सुनकर वो हैरानी से उसके चेहरे को देख रहा था। सोते समय वो बहुत मासूम लग रही थी। उसने प्रियल से ये सब सुनने की उम्मीद नहीं की थी, मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया था। वो दिन भर की थकावट भूल गया था, मानो ये वही शब्द थे जो वो सुनना चाहता था। कमरे में जाने के बाद उसने प्रियल को बेड पर लिटा दिया और फिर खुद वहां मौजूद कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। निक उसे जितना देख रहा था उसका उसे देखने का उतना ही मन कर रहा था। वो उसे देखकर कभी मुस्कुरा रहा था तो कभी खुद में ही डूब रहा था। ऐसे करते करते उसे भी वही नींद आ गई। अगले दिन प्रियल जब उठी तो उसे निक दिखाई दिया, जो उसके पास कुर्सी पर ही सोया हुआ था। उसे देखते ही उसे अंदर से खुशी के वो एहसास हुए जो आज तक कभी नहीं हुए थे, मगर तभी उसका ध्यान निक की चोटों पर गया। प्रियल धीरे से उठी और परेशान होकर डॉक्टर को बुलाने चली गई। जल्द ही डॉक्टर नील प्रियल के साथ आए और कैप्टन निक की पीठ को जोर से थपथपाते हुए बोले, निक गेट अप, आइए आपको भी एग्जामिन कर लूं। सुना है बहुत चोटें आई हैं आपको। इस तरह से चोटों के साथ रहना क्रिटिकल डैमेज कर सकता है। निक आंख मसलते हुए उठा। उसने खुद को संभाला और डॉक्टर से पूछा, कौन सी चोटें डॉक्टर? डॉक्टर ने कंधे उचकाए, आई डोंट नो, मुझे तो ये मैडम बुलाकर लाई हैं। कहा है आपको बहुत सी सीरियस चोटें आई हैं। फिर डॉक्टर ने निक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, मगर देखकर लगता नहीं। प्रियल एकदम से बोली, अरे उनके सिर और हाथ पर ध्यान से देखिए कितनी खरोचे हैं। वो बहुत परेशान दिख रही थी। डॉक्टर नील ये सुनकर हंसने लगे। वो बोले, ये ऐसी खरोचे, इन्हें लगती रहती हैं, ये इनकी पुरानी साथी हैं। निक भी मुस्कुराया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर यू कैन गो, और इन चोटों को मैं खुद ट्रीट कर लूंगा। डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद निक ने प्रियल को घुमाया और कहा, तुम आओ इधर। प्रियल उसके सामने आई और मासूम सा मुंह बनाती हुई बोली, पर आपकी चोटें और आप खुद कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? निक ने कहा, क्योंकि मैं भी मेडिकल की स्टडी कर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं है, मैंने इससे भी बड़ी बड़ी चोटों को सहा है और सही भी किया है। प्रियल को ये सुनकर हैरानी हुई, क्या, पर आपको टाइम कब मिलता है स्टडी के लिए? निक ने कहा, बस यहीं। खैर छोड़ो इसे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, उसने पूछा। और जैन? निक ने कहा, खुद ही देख लो, आओ चलो जैन से मिलकर आते हैं, उसने कहा और प्रियल को अपने साथ ले गया। वो दोनों जैन से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। वहां पर आरोही और आलिया पहले से ही मौजूद थीं, मगर जैन सो रहा था। दोनों ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बाहर आ गए। मिस्टर दत्ता के घर पर अलग ही माहौल था। प्रियंका जी को अपने बेटे के सही होने की खबर तो मिल गई थी, मगर वो बार बार एक ही चीज की रट लगा रही थी। वो प्रभास दत्ता से कह रही थी, प्रभास जी मुझे बस एक बार प्रियंक से मिलना है, अगर एक बार मैं देख लूंगी तो मुझे सुकून आ जाएगा, प्लीज प्रभास जी कुछ कीजिए। मिस्टर दत्ता खुद में ही परेशान थे। मिस्टर जॉनसन और उनके बीच में बात तो हो गई थी, मगर उसकी वजह से उन्हें अभी भी टेंशन हो रही थी। उन्होंने प्रियंका दत्ता को मनाते हुए कहा, प्रियंका जी समझिए, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी हम फिलहाल अभी नहीं जा सकते। प्रियंका जी रोने लगी। उन्होंने जिद करते हुए कहा, पर आप तो अथॉरिटी हैं, आप जा सकते हैं, बताइए मुझे, सिक्योरिटी टाइट है तो आप क्यों नहीं जा सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर दत्ता ने कहा, इंस्टीट्यूट के अपने लोगों के अलावा किसी को भी इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में जाना अलाउड नहीं है। हम लोग उनके पार्टनर में आते हैं, मेंबर जरूर हैं, मगर उनके अपने नहीं। वैसे भी प्रियंक कल तक आ जाएगा। रोहन को अब तक प्रियंक और प्रियल की खराब तबीयत के बारे में पता चल गया था। उसे इस बारे में जीन से पता चला था। उसने प्रांजल को भी बता दिया था, जिसकी वजह से वो भी परेशान थी। रोहन ने उसकी परेशानी देखी तो निक को फोन किया और मिलने का बंदोबस्त करने के लिए कहा। निक ने पहले तो चीजों को टाला, लेकिन फिर बंदोबस्त करने के लिए हामी भर दी। प्रियंक की तबीयत देखने के लिए उसके अपनों में सब थे, मगर प्रियल के लिए कोई नहीं था, तो उन्हें टेंशन होने लगी थी। दोनों को प्रियल से मिलना था। निक के बंदोबस्त करने के बाद दोनों प्रियल से मिलने के लिए बाहर निकल गए। तभी प्रियंका जी ने उन्हें देखा। उन्हें देखते ही प्रियंका जी बोली, अब कहाँ चली तुम? देखो प्रांजल, मैं परेशान हो गई हूँ इस बार तुमसे। प्रांजल जब से यहाँ आई थी तब से उसका बाहर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा था। प्रियंक भी बाहर होने की वजह से मुसीबत में फंस गया था, तो वो उसके लिए भी डर गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। मिस्टर दत्ता को प्रांजल से कोई खास लगाव नहीं था। वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने टीवी देखते हुए ही कहा, जाने दीजिए, बच्ची थोड़ी है, यह बड़ी हो गई है। प्रांजल को पता था उसकी माँ उसे ऐसे नहीं जाने देगी, इसलिए उसने रोहन का कहा और बोली, अरे रोहन जी जो है ना साथ में, हम पहले शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी, और उसके बाद आ जाएंगे। वो ये भी नहीं बता सकती थी कि वो इंस्टीट्यूट में प्रियल और प्रियंक से मिलने के लिए जा रही है। प्रियंका जी को अभी भी आश्वासन नहीं मिला था। शालू अगर साथ होती तो उन्हें और अच्छा लगता, इसलिए उन्होंने पूछा, शालू नहीं जा रही? रोहन शालू को बताकर उसे भी परेशानी में नहीं डाल सकता था। वो बहाना बनाते हुए बोला, वो थोड़ी पैकिंग करने में बिजी है, वो कल हम लोग वापस इंडिया जा रहे हैं ना, तो पैकिंग करना भी जरूरी है। दोनों का इंडिया जाने का टूर सेट हुआ था। प्रियंका जी का मन अभी भी नहीं मान रहा था, मगर उन्हें रोकना ठीक नहीं लगा। ना चाहते हुए भी वो बोली, ओके फिर जाओ, पर ज्यादा टाइम मत लगाना प्लीज, बाहर जो कुछ भी हो रहा है तो डर लगता है। थैंक्स मम्मा, प्रांजल बोली और फिर प्रियल से मिलने के लिए निकल गई। तकरीबन 45 मिनट बाद रोहन और प्रांजल दोनों इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां निक उन्हें मेन गेट से रिसीव करने के लिए आगे आए। एक दूसरे को देखते ही दोनों एक दूसरे की ओर आए और निक ने रोहन से हाथ मिलाया। वेलकम रोहन, निक ने कहा। उसने प्रांजल की तरफ हाथ बढ़ाया तो प्रांजल का चेहरा देखकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रांजल ने उस दिन कुछ भी ठीक से नहीं बताया था, जो बात उसके दिमाग में थी फिर वो शक्ल से ही अकड़ू खड़ूस भी दिख रही थी। निक ने अपना हाथ बीच रास्ते में ही वापस खींच लिया। प्रांजल वाली अकड़ू और खड़ूस वाली फीलिंग को फील कर रही थी। निक के हाथ खींचने के बावजूद वो बोली, थैंक्स। निक ने धीरे से कहा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान हूँ, अब है तो प्रियल की बहन ही ना, या यू टू मैडम, निक ने मुस्कुराते हुए उसे कह दिया। प्रांजल बोली, मुझे अपनी प्रियल दी से मिलना है। हाँ जरूर, वो ठीक है, आओ मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ।
वो तीनों जैन के रूम में आए। वहाँ प्रियल, आलिया और आरोही तीनों थे। जैन को अभी तक होश नहीं आया था और उन तीनों को जैन के होश में आने का इंतजार था। प्रांजल ने अपनी बहन प्रियल को देखा तो वो तुरंत उसकी ओर दौड़ी। इस दौरान उसने निक को भी धक्का दे दिया। निक को गुस्सा आया और उसके मुंह से निकला, व्हाट, अब इनका क्या हो गया, इनका मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? निक के बोलने के अंदाज से ही उसकी सारी फीलिंग बाहर आ जाती थी। बाकी लोग कुछ और बोलते तभी उनका ध्यान जैन की तरफ गया। वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसे आंखें खोलते देख निक उसकी तरफ दौड़कर गया और पूछा, जैन तुझे ठीक तो लग रहा है ना? जैन ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा रुककर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है? निक से उसका ध्यान आलिया की तरफ गया, जो उसे छुप कर देख रही थी। उसने उसकी तरफ देख कर पूछा, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ देख लो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर है, तुमने हम सबको डरा दिया था, निक ने जवाब दिया। उसे पता था आलिया का यहाँ होना उसे अच्छा लगा था। निक की बात सुनकर आलिया शर्मा गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो फ्रेंड्स भी नहीं हैं, बेस्ट फ्रेंड तो दूर की बात है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो बस जान पहचान होने के नाते मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। अच्छा, तो ये बात थी, तो तुम रात भर से यहाँ क्यों थी? और पहले जब टीवी पर जैन खराब हालत में देख रहा था, रो क्यों रही थी? आरोही ने सटे हुए शब्दों में कहा। उसे पूरा मामला नहीं पता था। आलिया को गुस्सा आया और उसने उसे आंखें दिखाकर जवाब दिया, मैं तो सिर्फ रो रही थी, और प्रियल वो तो निक्सर की डेथ की न्यूज़ सुनकर इमोशनल शॉक में चली गई थी, यहाँ तक कि बेहोश भी हो गई थी। इमोशनल ट्रॉमा में जाने की वजह से प्रियल के साथ जो भी हुआ वो उन बातों को भुला चुकी थी। आलिया की बात सुनकर उसने हैरानी से कहा, क्या मैं शॉक में चली गई थी और बेहोश भी? निक ने टॉन्ट मारते हुए जवाब दिया, मिसेस शर्मा लगता है जब आप बेहोश होकर गिरी थी तब आपके सिर में कोई चोट लग गई होगी, तभी आप चीज़ें भुला रही हैं, और हाँ नींद में भी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। निक की बात सुनकर प्रियल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने अपनी नज़रें झुका ली, मगर वो चेहरे से मायूस भी हो गई थी। प्रांजल को निक का ये टॉन्ट पसंद नहीं आया था। उसने निक को आंखें दिखाकर कहा, मेरी बहन को कुछ बोला है ना तो? तो क्या? निक ने भी उसी एटीट्यूड से जवाब दिया। प्रांजल कुछ कहती उससे पहले प्रियल ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। क्या हुआ मिसेस दत्ता, कंप्लीट योर सेंटेंस, निक ने प्रांजल को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। उसे लेकर उसका जो भी गुस्सा था वो सातवीं आसमान पर था। प्रांजल के लिए भी शांत रहना मुश्किल हो रहा था। वो बोली, तो अच्छा नहीं होगा यार, ये किस बात का एटीट्यूड लेकर घूम रहा है, तुम ये जो अपनी अपनी नीली आंखों से सबको डराने की कोशिश करते हो ना, वो मुझ पर नहीं चलने वाला, उसके मुंह से निकला। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी निक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी हंसी काबू करते हुए कहा, नीली नीली आंखें, तो क्या आंखें निकलवा लूं अपनी? प्रियल नहीं चाहती थी कि उनकी बहस बढ़े। उसने प्रांजल का हाथ पकड़कर सख्त आवाज में कहा, प्रांजल चुप कर तू। ठीक है दी, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, उसने निक को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन अकेले में। हाँ, यहाँ सिर्फ मैं ही तो हूँ जो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा करते हैं, पूरा हॉस्पिटल खाली करवा देते हैं ताकि ये अपनी बहन से अकेले में बात कर सके, निक ने थोड़ा रूडली जवाब दिया। रोहन ने बातों का रुख बदलते हुए बोला, अच्छा परी, तुम प्रियल से बात कर लो, तब तक मैं भी निक से कुछ बात कर लूँ। प्रांजल प्रियल का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगी कि निक ने उन्हें रोकते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ जा रही हो दोनों हवा हवाई बनकर? प्रियंक भी यहीं पर है, थोड़ा ध्यान रखो। तो हम कहाँ से जाएंगे? प्रांजल ने मासूमियत से पूछा, लेकिन निक ने उसी एटीट्यूड से कहा, मुझे क्या पता। उन दोनों की बहस सुनकर उन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैन ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम लोग हॉस्पिटल के बैकडोर से निकल जाओ, इस रूम की लास्ट विंग में चेंजिंग रूम के पीछे है। प्रांजल ने उसे थैंक्स कहा और प्रियल के साथ जैन के बताए अनुसार उसके रूम में आ गई। वहां आते ही प्रांजल ने उसे गले लगा लिया। दी, आप ठीक तो हो ना? जब रोहन जीजू ने आपके बारे में बताया तो मैं बहुत घबरा गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ परी, पर कुछ याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे, जैसे मैं कुछ भूल गई हूँ। चल छोड़ इन सब बातों को, वैसे भी याद रखकर कोई फायदा नहीं है। दी, ये आपका नीली आंखों वाला हीरो बहुत अकड़ू है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे प्यार भी होगा ना, तब भी अपनी ईगो में ये कुछ नहीं बताएगा। देखा नहीं आपने कितने एटीट्यूड में जवाब दिया? प्रांजल अभी तक निक से नाराज थी, तुम भी तो उनसे झगड़ा कर रही थी। परी, उनकी पोजीशन ही ऐसी है कि सब उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे में तुम बदतमीजी करोगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही, प्रियल ने उसे समझाया, लेकिन परी उल्टा उसी की ही टांग खींचने लगी। अच्छा जी, उन्हें बड़ी इज्जत दी जा रही है और आपके वो तो आपकी तरफ ठीक से देखते तक नहीं है, इसी बात का गम है? अरे शुक्र मनाओ, अब ठीक से बात करने लगा है, पहले तो क्या ही बताऊं। प्रियल ने अपने माथे पर हाथ रखा। प्रांजल मुस्कुराई और फिर कहा, दी, पता है मैं भी रोहन जीजू और शालू दी के साथ इंडिया वापस जा रही हूँ, अब जब शादी में आएंगे तभी आपसे मिल पाऊंगी। बोलते हुए प्रांजल फिर से प्रियल के गले लग गई। आई विल मिस यू सो मच दी, आई विल मिस यू टू मेरी जान, प्रांजल प्रियल से अलग होकर बोली, मुझे अब चलना चाहिए, वैसे भी हमें यहाँ आए काफी देर हो गई है। प्रियल ने हामी भरी और कमरे से बाहर आकर रोहन के लौटने का इंतजार करने लगी।